साक्षी और मंथन से बात करने के बाद आरव वहां से निकल गया। उसने कबीर से कॉन्टैक्ट किया और जहां पर उसकी मीटिंग थी उस जगह का लोकेशन मांगी। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो लगभग 5 बजे के करीब फ्री हुआ। आरव अपनी गाड़ी में था और ड्राइव करने के बजाय कुछ सोच रहा था। आरव ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हॉस्पिटल का रास्ता यहाँ से 20 मिनट दूर है और ऑफिस 1.5 घंटे। आयु की शिफ्ट लगभग 6 बजे खत्म होती है, लेकिन हो सकता है वो अभी फ्री हो। वैसे भी अब ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है, और ऑफिस से इसे लेने के लिए आया तो और टाइम लग जाएगा, और ओबेरॉय मेंशन भी जाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, आयु के पास ही चला जाता हूँ। आरव ने उसी वक्त आयु को कॉल किया, लेकिन वो अपना मोबाइल हॉस्पिटल में साइलेंट ही रखती थी। आयु के कॉल पिक न करने पर आरव समझ गया कि उसका मोबाइल साइलेंट होगा। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी कॉल ना पिक करने पर आरव ने चिढ़ते हुए गाड़ी के स्टेयरिंग पर हाथ मारा और कहा, रात को सोते टाइम मोबाइल साइलेंट नहीं करती, और अब जब दिन का टाइम है मैं कॉल कर सकता हूँ तो मोबाइल को साइलेंट कर रखा है। आरव ने सिर हिलाया और सीधा मिस्टर कपूर को कॉल कर लिया। मिस्टर कपूर वैसे ही आरव को थोड़ा कम पसंद करते थे। वो जब भी हॉस्पिटल आता था तब सबकी नाक में दम कर देता था। जब उन्होंने आरव का कॉल आता देखा तो आईज रोल करके कहा, ओ गॉड, मिस्टर खुराना यहाँ ना आए, बस कॉल पर उन्हें जो काम है वो बता दे, वरना आकर सबसे पहले मेरे सिर पर ही बैठेंगे। बड़बड़ाते हुए मिस्टर कपूर ने कॉल पिक किया। मिस्टर कपूर के कॉल पिक करते ही आरव ने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, मेरी मिसेस खुराना की शिफ्ट कब फ्री होगी? मिस्टर खुराना, मैं आपकी मिसेस खुराना तो हूँ नहीं जो आप कॉल करके मुझे पूछ रहे हो। मैं यहाँ का CEO हूँ, मुझे नहीं पता कि किसकी शिफ्ट कब होती है, मिस्टर कपूर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सिर्फ नाम के CEO हैं, असली ओनर तो मैं ही हूँ। ठीक है फिर, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अगर वो फ्री हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुई तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, मैं उसे लेकर जाने वाला हूँ, आरव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। उसने गाड़ी सीधी लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा ली। वहीं आरव से बात करने के बाद मिस्टर कपूर का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उन्होंने जल्दी से पानी पिया और कहा, वो यहाँ आ रहे हैं इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ओबेरॉय को फ्री रहना होगा ताकि वो जल्द से जल्द उनके साथ जा सकें। क्या मुसीबत है, डॉक्टर ओबेरॉय को यही इंसान मिला था शादी करने के लिए। जब से ये डॉक्टर ओबेरॉय से मिला है तब से हॉस्पिटल में आना जाना पड़ गया है। पहले तो सालों तक शक्ल तक नहीं दिखाता था और अब रोजाना आकर मुझे तंग करता है। आरव से मिलने के ख्याल से ही डॉक्टर कपूर के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो जल्दी से उठे और कॉल करके पियोन को बुलाया। मिस्टर कपूर ने पियोन से कहा, डॉक्टर आयुष्का सिंह ओबेरॉय की शिफ्ट चेक करो कब तक की है, अगर कोई सर्जरी नहीं है तो उन्हें बोलो वो घर जा सकती है। पियोन ने उनकी बात पर हामी भरी और तुरंत बाहर चला गया। हॉस्पिटल काफी बड़ा था और वहां वर्किंग स्टाफ भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसे आयु को ढूंढने में भी टाइम लगता था। वहीं आयु और अयान एक साथ थे। वो लगभग आधे घंटे पहले किसी सर्जरी से फ्री हुए थे और रेस्ट कर रहे थे। अयान ने अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कहा, आज के लिए हम फ्री हैं, फिर भी ड्यूटी के लिए 1 घंटे बचे हैं, चाहे तो आराम कर सकती हो या फिर किसी वार्ड में जाकर पेशेंट को चेक कर सकती हो। प्राइवेट वार्ड कैसा रहेगा, आयु ने पूछा। प्राइवेट वार्ड रहने दो, VIP सेक्शन में जाओ, वहां ज्यादा पेशेंट नहीं है, प्राइवेट वार्ड में गई तो 2 घंटे में भी फ्री नहीं हो पाओगी, अयान ने कहा। गुड आइडिया, वहां से मैं 20 से 25 मिनट में फ्री हो जाऊंगी, आयु ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अपना डॉक्टर कोट पहनकर बाहर चली गई। आयु का मोबाइल अयान की डेस्क पर रखा था। अयान ने पीछे से कहा, मोबाइल तो ले जाती, ये लड़की बस खुद में रहना जानती है, अयान ने कहा। उसने आयु के मोबाइल को उठाया और अपने पास ले लिया। वो भी हॉस्पिटल का राउंड निकालने चला गया। वहीं फैज ने अपने लिए VIP रूम बुक कर लिया था। पूरे दिन से वो आयु का वेट करते हुए बोर हो रहा था। आयु VIP रूम के पेशेंट को चेक करती हुई आगे बढ़ रही थी और फिर फैज के रूम तक आई। फैज को उस रूम में देखकर आयु हैरान थी। उसे देखकर फैज के फेस पर हल्की स्माइल थी। आयु के आने पर वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। तभी आयु उसके पास आते हुए बोली, अरे नहीं, आप कंफर्टेबल हो जाइए। जी, फैज ने जवाब में इतना ही कहा। वहां एक नर्स भी ड्यूटी के लिए खड़ी थी। आयु के आने पर वो बोली, मैम मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, इफ़ यू डोंट माइंड आप 10 मिनट के लिए यहाँ रुक सकती हैं। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे पता था कि VIP वार्ड में ड्यूटी देते टाइम नर्सेस को पूरा अटेंटिव होना पड़ता है, बाथरूम यूज करने तक के लिए भी वेट करना पड़ता है। नर्स के जाते ही आयु फैज के पास रखी फाइल को पढ़ने लगी। ये फाइल डॉक्टर के लिए होती थी ताकि कोई नया डॉक्टर राउंड के लिए आए तो फाइल पढ़कर पेशेंट को ट्रीट कर सके। फाइल पढ़ने के बाद आयु ने फैज से कहा, चलो अच्छा हुआ आपको ज्यादा चोट नहीं आई है, आपको 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। फैज ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जबकि आयु को वहां पूरे 10 मिनट बिताने थे, तो वो पास की टेबल पर बैठ गई। उसने फैज के चेहरे की तरफ देखा और अपने मन में कहा, बेवजह अयान ओवर रिएक्ट कर रहा था, उसे कोई गलत फहमी हो गई होगी। ये मुझे अजीब नजरों से क्यों देखेगा, ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। दोनों ही भाई मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। आयू फैज के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही थी, जबकि सुबह जब अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे थे तभी फैज समझ गया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आयू उसे गलत ना समझे इसलिए वो उससे जानबूझकर बात नहीं कर रहा था। एक बंद कमरे में चुपचाप टाइम बिताना काफी मुश्किल होता था। आयू ने देखा तो नर्स को गए हुए सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे। उसने टाइम पास करने के लिए फैज से बातें करना शुरू कर दिया। सर, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा, आयू ने हल्का मुस्कुराकर कहा ताकि फैज कंफर्टेबल हो जाए। फैज पहले तो कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन आयू के पूछने पर उसने आयू के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, डॉक्टर, हमारी बैक में बहुत दर्द हो रहा है, इधर राइट हैंड पर बैंडेज लगा हुआ है, तो ठीक से पानी भी नहीं पी सकते। हमें दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं है, इसलिए हमने नर्स से भी कुछ नहीं कहा। बैंडेज भी बहुत लग रहा है, क्या आप ठीक कर सकती हैं? फैज ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे ये सब कहने में काफी हिचकिचाहट महसूस हो रही हो। फैज के लिए ये सब मुश्किल नहीं था क्योंकि वो माफिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता था। दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेशन उसे जाहिर करने हैं या कैसे इस वक्त सामने वाले को अपनी बातों की जाल में फंसाना है, वो उसमें माहिर था। वैसे भी फैज को सब छुपे रुस्तम के नाम से जानते थे। उसके दिल में जो भी चल रहा होता था वो कभी उसकी आंखों और चेहरे से जाहिर नहीं होता था। हाँ क्यों नहीं सर, हम यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं, आयू ने जवाब दिया और फैज के पास चली गई। आयू फैज के पास आई और उसकी ड्रेस की स्लीव्स ऊपर करके उसके हाथ पर लगा बैंडेज सही करने लगी। फैज के राइट हाथ पर ज्यादा चोट आई थी।
फैज का बैंडेज सही करते हुए आयू उसके बिल्कुल करीब थी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। फैज ने अपने मन में कहा, अच्छा तो आपको करीब लाने का ये तरीका है जिसे किसी को डाउट भी ना हो और हम आपको देख भी सकें। हमने इतनी जल्दी किसी से इतना अटैचमेंट फील नहीं किया जितना आपके साथ हो रहा है। आपका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। जरूर उन लोगों ने आपको फंसाया होगा। जो लड़की खुद से ज्यादा अपने सामने वाले की केयर कर रही है, हम नहीं मानती कि वो किसी की जान लेने के बारे में सोच भी सकती है। फैज आयू से सिर्फ 2 ही बार मिला था और वो भी कम टाइम के लिए। वो एक चीज में सबसे अच्छा था और वो था कि सामने वाले से चंद मुलाकातों में उनके बारे में पता लगा लेता था, और यही कुछ आयू के साथ हुआ था। उसने आयू के बर्ताव से ही सेंस कर लिया था कि जरूर रोहन ने ही उसे फंसारा होगा। आयू ने फैज के बैंडेज को अच्छे से बांध दिया और फिर उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर कहा, हो गया है सर, आई होप अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप बोल रहे थे आपको पानी पीना था, रुकिए मैं आपको पानी दे देती हूँ। और आप यहाँ हेजिटेशन फील मत कीजिए, नर्स आपकी हेल्प के लिए है, वो भी इतनी ही हेल्पफुल होती है। आपको कुछ भी चाहिए तो आप उन्हें बोल दिया करो। आयू बोलते हुए फैज के लिए पानी लेकर आई और उसे पिलाने लगी। वहीं अयान आयू का मोबाइल लेकर उसके पास आ रहा था। उसने आयू का मोबाइल चेक किया तो उस पर आरफ के काफी सारे कॉल आए हुए थे, इसीलिए वो अपना काम छोड़कर आयू को मोबाइल देने पहले आया। वीआईपी बोर्ड में आयू को ढूंढते हुए अयान फैज के बोर्ड तक पहुंचा। उसने देखा कि आयू उसे पानी पिला रही थी और उसका एक हाथ फैज की बैक पर था। अयान के मना करने के बावजूद आयू फैज के पास आई थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने दरवाजे पर खड़े होकर सख्त आवाज में कहा, डॉक्टर ओबेरॉय, ये दिन में दूसरी बार है जब तुम्हारी केयरलेसनेस के लिए मुझे सफर करना पड़ रहा है, और ये दूसरी बार है जब आप हमारे और उनके बीच में आए हैं। मिस्टर सिंघानिया, हम बार बार आपको माफ नहीं करेंगे, फैज ने अपने मन में कहा और अयान की तरफ घूर कर देखने लगा। आयू कुछ कहती उससे पहले नर्स भी वहां आ गई थी। उसने अंदर आते हुए आयू से कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर ओबेरॉय, पिछले 3 घंटे से मैं रूम से बाहर नहीं निकली थी और मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत थी। आयू ने बिना कुछ कहे हल्का मुस्कुराकर नर्स की बात पर सिर हिलाया और फिर अयान की तरफ गुस्से में देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर फैज के फेस पर ना चाहते हुए भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। आपकी आंखों का गुस्सा तो आपकी हर अदा से ज्यादा कातिलाना है, हम कह रहे हैं कि आप बिना कुछ करे ही हमें मार डालेंगी डॉक्टर, फैज ने आयू की तरफ देखकर सोचा। अयान ने देखा आयू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वो फिर से तेज आवाज में बोला, आई टेल यू डॉक्टर ओबेरॉय, मुझे इग्नोर मत करो। आयू ने फिर भी अयान की बात का जवाब नहीं दिया। वहां से जाने से पहले उसने फैज की तरफ देखा और कहा, आई होप मिस्टर खान अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर जाएंगे। फिर भी आपको किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप नर्स को बोल सकते हैं, डॉक्टर भी राउंड लगाते रहते हैं, हो सकता है मैं भी आ जाऊं, गेट वेल सून। फैज ने उसकी बात पर हां में सिर हिलाया। फिर आयू वहां से चली गई जबकि अयान उसके पीछे गुस्से में आ रहा था। अयान को अपने पीछे आता देखकर आयू उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, डॉक्टर सिंघानिया मेरे पीछे मत आओ, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे काम। आयू ने देखा अयान बिल्कुल चुप है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने अयान की नजरों को फॉलो करते हुए पीछे देखा तो वहां आरफ खड़ा था जो हाथ बांधे उन दोनों की बातें सुन रहा था।